हेलो दोस्तों, मैं जगत चंदौली लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है नई दिशा। और हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ है
मैं प्रेमा नेगी।
तो प्रेमा, क्या कहती हो, कार्यक्रम शुरू किया जाए?
अरे नेकी और पूछ पूछ।
तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम जानकारी से भरे हमारे पहले सेगमेंट जानो अनजाने के साथ।
दोस्तों, जानो अनजाने में आज हम आपको बताने वाले हैं STI यानी कि यौन रोगों के बारे में और STI और HIV के जुड़ाव के बारे में।
दोस्तों, STI का संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी STI संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग करता है। STI के लक्षण पुरुषों में जल्दी नजर आते हैं, जैसे पेशाब के दौरान लिंग में जलन, खुजली, लिंग पर फोड़े फुंसी आदि। अगर लिंग पर कोई भी खुला घाव होगा और ऐसी दशा में आप बिना कॉन्डोम का इस्तेमाल किए संभोग करेंगे तो इसका असर आपके साथी पर भी पड़ेगा और वो भी STI से संक्रमित हो जाएगा। यदि वो HIV पॉजिटिव है तो STI से संक्रमित व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।
और हम आपको बता दें कि HIV को छोड़कर सभी यौन रोगों का पूरा और पक्का इलाज संभव है, लेकिन सही दवाइयों और पूरे कोर्स के साथ। किसी भी STI के इलाज के लिए पति और पत्नी को एक साथ जाना चाहिए, तभी इसका पूरा उपचार हो पाता है।
और अगर दोस्तों इस विषय पर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9717678223 यानी कि 9717678223।
जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद।
और अब
क्या जगत?
अरे कुछ नहीं प्रेमा भाई, हमारा अगला सेगमेंट भेजा फ्राई। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, ART शुरू करने पर अगर साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए?
और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन B, यानी कि दवा को जारी रखते हुए डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
और एपिसोड 31 का सही जवाब देकर हमारी आज की भाग्यशाली विजेता बन गई है राजन वर्मा, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद से। आपको ये भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो।
और अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, कौन से व्यवहार से HIV होने का खतरा सबसे अधिक है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, कौन से व्यवहार से HIV होने का खतरा सबसे अधिक है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए लिप किस यानी होंठों पर चूमने से, बी HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए टॉयलेट को इस्तेमाल करने से, सी असुरक्षित यौन संबंध से, और डी कॉन्डोम के साथ गुदा सेक्स करने से। अपने ऑप्शंस फिर से सुनिए, ए लिप किस यानी होंठों पर चूमने से, बी HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए गए टॉयलेट को इस्तेमाल करने से, सी असुरक्षित यौन संबंध से, और डी कॉन्डोम के साथ गुदा सेक्स करने से।
तो दोस्तों, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND35, भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D, और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
दोस्तों, एबॉर्शन यानी कि गर्भपात को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें एक महिला के लिए एबॉर्शन कराना बेहद जरूरी हो जाता है, और ये उसका अधिकार भी है जो हमारे कानून में माना गया है। तो आज हमने एबॉर्शन के बारे में जानने के लिए बुलाया है हमारी मेहमान डॉक्टर कमला राम को, जो कि परिवार सेवा संस्थान से हैं। डॉक्टर राम, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शारो, शारो,
डॉक्टर, आपसे हमारा पहला सवाल है कि क्या हमारे देश में अबॉर्शन लीगल है और ये सुविधाएं कहाँ प्राप्त हैं?
हमारे देश में अबॉर्शन बिल्कुल लीगल है। 5 महीने तक या 20 सप्ताह तक का अबॉर्शन कोई भी महिला, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, 20 हफ्ते का प्रेगनेंसी का अबॉर्शन करवा सकती है। ये सुविधाएं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है परिवार सेवा संस्था, जिसके 35 क्लिनिक्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पर सुरक्षित और कम दामों में अबॉर्शन की सुविधा उपलब्ध है।
अच्छा डॉक्टर राम, ये बताइए, लोग फिर भी चोरी छिपे अबॉर्शन क्यों करवाते हैं?
आपको ये जानकर के अचंभा होगा कि हिंदुस्तान में अबॉर्शन कितने ज्यादा होते हैं। अंदाजे से 11 मिलियन अबॉर्शन एक साल में होते हैं, जिसमें से आधे इलीगल होते हैं और अनरिपोर्टेड जाते हैं। मालूम भी नहीं पड़ता है कि अबॉर्शन हो रहे हैं। ये ज्यादातर इस कारण है कि एक तो लोगों को जानकारी नहीं है कि अबॉर्शन लीगल है और वो उनका हक है अगर वो करवाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ा स्टिग्मा भी अटैच्ड है। जहां पर कि अविवाहित लड़की होती है तो उसको संकोच होता है किसी के पास जाने में, उसको ये भी नहीं मालूम कि उसको कहाँ जाना है। इस चक्कर में उसको जो भी जैसी भी दिशा दिखाता है, चाहे गलत हो सही हो, वो उस रास्ते चल पड़ती है और अनसेफ अबॉर्शन का शिकार हो जाती है।
डॉक्टर, हमें ये बताइए कि बार बार अबॉर्शन कराने से क्या खतरा है और इस खतरे से कैसे बचा जाए?
अगर अनचाहा गर्भ ठहर जाता है तो अबॉर्शन एक सेफ प्रोसीजर है, लेकिन ये सही तरीके से करना चाहिए और सही जगह से करवाना चाहिए। परंतु आजकल कई लोगों ने अबॉर्शन को एक गर्भ निरोधक उपाय की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं और जब भी अनचाहा गर्भ ठहरता है अबॉर्शन करवा लेते हैं और कोई तरीका नहीं अपनाते हैं जिससे कि गर्भ पेट में नहीं ठहरे। इस अबॉर्शन का जो बार बार कराते हैं उससे संभव है कि मतलब औरत के शरीर पर कुछ ना कुछ तो असर करेगा ही, जैसे कि उसमें खून की कमी आनी या कमजोरी हो जाना या उसके इन्फेक्शन अगर हो जाता है अबॉर्शन के दौरान तो उसके आगे जाकर के बच्चा ठहरने में भी तकलीफ हो सकती है। बार बार के अबॉर्शन से बेहतर है कि गर्भ निरोधक उपाय करा जाए, बिकॉज गर्भ निरोधक उपाय के इस्तेमाल से ही अनचाहा गर्भ रुकने की संभावना नहीं होती है। आजकल बहुत अच्छे और सेफ गर्भ निरोधक उपाय उपलब्ध हैं।
अच्छा डॉक्टर राम, ये बताइए कि अगर अबॉर्शन इलीगल तरीके से करवाया जाए तो इसमें HIV का कोई खतरा हो सकता है?
इलीगल अबॉर्शन जहाँ होता है ज्यादातर वो जगह मॉनिटर नहीं होती है, कौन कर रहा है हमको मालूम नहीं है। अगर वो आदमी को नॉलेज है इसके बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की नॉलेज है नहीं है हमको मालूम नहीं, तो ऐसा आदमी जिसको जानकारी नहीं है, जो बेसिक हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है, अगर वो किसी का अबॉर्शन करता है तो वो उसको कोई भी इन्फेक्शन दे सकता है जिसमें HIV हो सकता है।
डॉक्टर राम, आप हमारे इस शो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको भी धन्यवाद मेरे को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मुझे उम्मीद है जिसने भी यह कार्यक्रम सुना है कभी भी इलीगल या अनसेफ अबॉर्शन नहीं कराएगा। धन्यवाद।
दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, यही वो मिलन है जो सचमुच है दिल का करा।
और दोस्तों, अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट आपकी बात की।
तो दोस्तों, आज का हमारा मैसेज है प्रेम जी का और वो पूछ रहे हैं कि एड्स से ग्रसित व्यक्ति दिखने में कैसा होता है। प्रेम जी, HIV संक्रमण होने से कोई बाहरी परिवर्तन नहीं होते, तो एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी आपकी और हमारी तरह ही प्रतीत होता है, सामान्य और स्वस्थ। वो हर तरह के काम करने में सक्षम भी होता है, तो देखने से किसी के भी HIV स्टेटस का पता नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एड्स की स्थिति तक बहुत सी शारीरिक परेशानियां हो जाती हैं और उस समय व्यक्ति काफी बीमारियों से जूझ रहा होता है।
और हमारा दूसरा सवाल है पूजा का देहरादून से, जो पूछ रही हैं कि अगर सिर्फ ओरल सेक्स करें तो क्या HIV हो सकता है? पूजा जी, ओरल सेक्स में लिंग का मुख से या योनि का मुख से संपर्क होता है। मुख मैथुन या ओरल सेक्स के दौरान सावधानी के तौर पर कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह में खुले घाव या छाले हैं और पार्टनर्स में भी कोई HIV संक्रमित है तो योनि स्राव या वीर से मुंह के खुले घावों का संपर्क हो सकता है और HIV का खतरा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग किसिंग को भी ओरल सेक्स कहते हैं। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि किसिंग यानी चूमने से HIV का खतरा नहीं है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी HIV के संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खतों या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
चिट्ठी भेजने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद 121003 हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYDISHAA@gmail.com।
जगत, अब जानकारियाँ तो हम काफी दे चुके हैं, क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए।
बिल्कुल प्रेमा, तो दोस्तों आइए सुनते हैं मनोरंजन और जानकारी से भरपूर हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की 35वीं कड़ी।
पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, विनोद रबिता से बात करना चाहता है लेकिन रबिता विनोद से बात नहीं करती।
उधर जयपाल अपनी माँ के व्यवहार को लेकर बहुत दुखी है क्योंकि माँ जयपाल को ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार मानती है। राजन सर कई दिनों बाद स्कूल में जाते हैं और स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें इसी बात के लिए खरी खोटी सुनाता है। आइए आप सुनते हैं आगे क्या होता है।
लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी।
हाँ कहिए।
अरे तुम यहाँ हो। लक्ष्मी ये दवाइयाँ जरा उधर रख दो।
हाँ लाइए। अच्छा सुनिए, आपसे कुछ बात करनी थी।
हाँ बोलो।
वो मैं कह रही थी कि घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है।
अच्छा।
हाँ और लाला की उधारी भी बहुत चढ़ गई है। ऐसे में अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो मैं लाला को पैसे देकर घर का राशन ले आती।
राशन भी जरूरी है। अच्छा सुनो, जरा वो डिब्बा इधर देना।
हाँ इसमें क्या है?
अरे रुको दिखाता हूँ। ये देखो।
हाय राम, इतने सारे पैसे आपके पास?
हाँ चोरी करके नहीं लाया हूँ बाबा, ये मेरे हिसाब के पैसे हैं, शहर में टैक्सी मालिक ने दिए थे।
अच्छा।
हाँ अब यही काम आएंगे।
अच्छा सुनिए।
हाँ?
मैं सोच रही हूँ कि अगर इन पैसों से आप कोई काम शुरू कर लें तो कैसा रहेगा?
लक्ष्मी ये इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि इनसे कोई काम शुरू किया जा सके।
लेकिन एक परचून की दुकान तो खोली ही जा सकती है ना?
कह तो तुम सही रही हो लक्ष्मी।
अच्छा एक बात और है।
बोलो लक्ष्मी।
अब जब इस वक्त आपके पास पैसे हैं ही तो ऐसे में अगर राधा का एडमिशन भी करा लें हम।
लक्ष्मी तुम सबके बारे में सोचते हो, अपने बारे में नहीं।
हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मैं राधा का एडमिशन करा दूंगा लक्ष्मी, लेकिन साथ ही साथ एक और जरूरी काम है।
कैसा जरूरी काम?
लक्ष्मी वो तुम्हारा HIV टेस्ट।
मेरा टेस्ट? लेकिन वो क्यों?
लक्ष्मी देखो समय समय पर तुम्हारा HIV टेस्ट होना बहुत जरूरी है।
लेकिन क्यों?
ताकि ये पता चलता रहे कि कहीं मेरी वजह से तुम भी HIV पॉजिटिव तो नहीं। देखो लक्ष्मी भगवान न करे अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
नहीं आप खुद को दोष मत दीजिए, सब ठीक होगा। अच्छा एक काम कीजिए, अब आप सो जाइए, मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ।
अरे ये तो उठ ही नहीं रहा।
लाओ कटोरी मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
अरे अरे विनोद बाबू, आप भला मेरी मदद क्यों करेंगे?
मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता?
आखिर हो तो तुम प्रधान के बेटे ही ना, और गांव के प्रधान के बेटे को एक नीची जाति की लड़की की मदद करते हुए किसी ने देख लिया तो क्या जवाब दोगे?
कटोरी माना कि मैं गांव के प्रधान का बेटा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, और एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करते हुए अगर कोई देख ले तो उसे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप कुछ भी कहिए विनोद बाबू, लेकिन जो कुछ आपने रबिता के साथ किया वो सब जानने के बाद आपकी किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता।
रबिता के साथ क्या किया मैंने? रबिता के साथ?
अब आप इसे अपनी नादानी कहिए या बेवकूफी, जिसकी वजह से रबिता पेट से हो गई थी।
क्या पेट से?
अगर समय रहते मैं उसकी मदद न करती तो अनर्थ ही हो जाता।
क्या? और शायद इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कितना बड़ा गुनहगार हूँ मैं रबीता का। कटोरी, सचमुच हम दोनों अनजान थे। भूल में बात कब आगे बढ़ गई पता ही नहीं रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कटोरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कटोरी।
मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? तुम रबीता के गुनहगार हो, माफी मांगनी है तो उससे मांगो।
लेकिन रबीता तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती।
अगर तुम सचमुच शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ।
सच? तुम सच कह रही हो कटोरी?
कल दोपहर 2 बजे गधेरे पे आ जाना।
ठीक है, कल मैं दोपहर 2 बजे गधेरे पर आ जाऊंगा। तुम रबीता को जरूर अपने साथ लाना।
अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ।
बच्चों, हमारा शिक्षा केंद्र गांव में पहली बार एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है।
लेकिन सर, उसका फायदा क्या होगा?
फायदा होगा, क्योंकि वो रक्त ब्लड बैंकों में जाएगा और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी बचाने में काम आएगा।
लेकिन सर, हमारी जिंदगी का क्या? आखिर खून तो हम लोगों के शरीर से ही जाएगा।
नहीं शंकर, रक्तदान का ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे शरीर का सारा खून निकाल लेंगे।
लेकिन सर, उसके बाद व्यक्ति को कमजोरी हो गई तो?
नहीं रबीता, शरीर में से जितना खून निकाला जाता है वो कुछ समय में फिर से बन जाता है और इससे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। लेकिन हाँ बच्चों, रक्तदान वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, बीमार ना हो और HIV पॉजिटिव ना हो। समझ में आई बात?
लेकिन सर, अगर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो पर उसे सुई से डर लगता हो तो?
रक्तदान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जो करना चाहता है वो कर सकता है और जो नहीं करना चाहता है वो ना करे। और उसके लिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो रक्तदान करना चाहता है उसका नाम लिखना होगा, एक सूची तैयार करनी होगी। तो बच्चों, आप सब लोग साथ दोगे ना?
जी सर।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है।
आ भाई ना गाड़ी में कुछ चमक।
रमेश।
अरे सूरज, क्या हाल है?
बस ऐसे ही यार, इधर का चक्कर था तो आ गए। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है?
थोड़ा फुर्सत में था तो सोचा क्यों ना आज टैक्सी की ही सफाई कर दी जाए, वैसे भी बहुत गंदी हो रही थी यार।
ये तो तुमने बहुत अच्छा किया।
वैसे सूरज, जयपाल की कुछ खबर है?
हाँ, घर पर फोन किया था, उसके पिताजी का देहांत हो गया है।
क्या?
हाँ यार,
जयपाल तो ठीक है ना?
अब मिलने के बाद ही पता चलेगा। ये तो वैसे मैं अभी 2 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ।
भैया जब आओ तो उसकी राजी और खुशी की खबर जरूर लाना।
हाँ हाँ।
और सूरज, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय मंगवाई जाए?
अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा मैं चलता हूँ।
लेकिन आते वक्त जयपाल की खबर जरूर लाना।
जरूर।
तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट क्या किया चाय की तरफ।
अगर कोई व्यक्ति STI यानी यौन रोगों से पीड़ित है तो वो क्या करता है और उसे क्या करना चाहिए?
ओफो जगत, ये सवाल हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं कि अगर वो STI से पीड़ित हैं तो वो क्या करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए।
अक्सर तो लोग शर्माते हैं, समुदाय को बताना नहीं चाहते हैं गुप्त रोगों के बारे में। अधिकतर लोग झाड़ू वाले के पास जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें सही प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सही समय पर अपना इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो ये संक्रामक रोग बहुत घातक हो सकता है। सही समय पर अपने जीवन साथी का अपना बचाव कर लेना चाहिए।
वर्तमान में गढ़वाल की भौगोलिक स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ दूर दूर तक चिकित्सा है और नज़दीक हमारे झाड़ फूक वाले हैं। लोग अगर किसी को बुखार भी आ जाता है तो पहले तांत्रिक के पास जाते हैं और अक्सर शर्म के मारे छिपाते हैं इन लोगों को, और जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर बाद में जानलेवा हो जाते हैं। और करना जबकि ये चाहिए कि अच्छे से डॉक्टर को दिखा के, सही टाइम पर दिखा के उसका इलाज करना चाहिए और जो परहेज होता है वो करना चाहिए।
दरअसल जब लोगों को ये पता चलता है तो वो संकोच करते हैं एक दूसरे से कहने में, और ये बात वो किसी से नहीं कहते, अपने तक सीमित रखते हैं, जिससे कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है अगर हम निसंकोच होकर अपना इलाज करें और जो उसमें सावधानी है रोग में वो बरतें, तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और हमें ज़्यादा करके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए किसी भी बीमारी में।
सुना आपने दोस्तों, अगर आप ऐसे ही शर्माएंगे और यौन रोगों जैसी बीमारी अपने तक ही रखेंगे तो आपको एक बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको समझदार बनते हुए पूरा इलाज ही करवाना होगा, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में खतरे को बुलावा दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देना चाहिए।
और दोस्तों, आज से ही जिसको भी ये परेशानी है उसे अच्छे डॉक्टर के पास जाकर पूरा इलाज करवाना होगा।
वैसे कुल मिलाकर एक ही बात सामने आती है कि एसटीआई पीड़ित व्यक्ति को अपना पूरा और पक्का इलाज करवाना चाहिए। ये उसके लिए तो सही है ही, बल्कि उसके जीवन साथी की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है।
तुमने बिल्कुल सही कहा प्रेमा। और दोस्तों, जैसा कि हमारा कार्यक्रम नई दिशा आ पहुंचा है अपने अंतिम पड़ाव पर, तो हमें आपसे इजाजत लेनी होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कार्यक्रम नई दिशा आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप भी भेजा फ्राई सेगमेंट के विजेता बनना चाहते हैं तो कार्यक्रम में पूछे गए सवाल का जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। एसएमएस करने के लिए चाहे तो आप हमारा नंबर एक बार फिर नोट कर सकते हैं। नंबर है 9717678223, यानी 9717678223।
और दोस्तों, अब मुझे और जगत को दीजिए इजाजत। हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।